शांति। आज बत्ती के शुभारंभ में हम पहले आदरणीय उषा बहन जी को सुनेंगे। हम आदरणीय उषा बहन जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आज वर्तमान समय ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने के लिए स्वस्थिति की आवश्यकता है। वो कौन सी स्वस्थिति है और स्वस्थिति में हम बहुत काल तक लंबे काल तक स्वयं को कैसे स्थित कर सके, ये विशेष हमें मार्गदर्शन देंगी। आदरणीय उषा बहन जी से हम सब परिचित हैं। विशेष यज्ञ में रचनात्मकता और नवीनताओं के लिए आपका अति विशेष योगदान है, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र रहा, चाहे जिस क्षेत्र को आज तक किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की, ऐसा गीता के भगवान का क्षेत्र रहा। बहुत गहन अध्यायी हैं आप। ये ऐसी चीजें हैं जो बिना गहन अध्ययन के परिपक्वता नहीं ली जा सकती है। तो इतना बिजी शेड्यूल के बीच में भी अपनी सेवाओं को बहुमुखी रूप से यज्ञ में देते हुए भी इतनी गहराई से किसी विषय का अध्ययन करके उसे लोक भोग्य बनाना, ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक बार फिर सबकी तरफ से आपका स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज के इस विषय को हमारे सामने खोले आदरणीय उषा बहन।
ओम शांति। मधुबन के बेहद के घर में बाबा के कर्म भूमि पर विशेष योग तपस्या करने का सौभाग्य मिला है। आप सबको और यहाँ का एक एक क्षण जो बीतता है, बाबा की याद और स्वस्थिति नेचुरल बनी रहती है। बाबा ने इस भूमि को ऐसा वरदान से सींचा है कि जो भी बाबा के बच्चे यहां आते हैं, मेहनत क्या होती है वो भूल जाते हैं। सहज योग का आनंद, सहज पुरुषार्थ का आनंद स्वतः ही अनुभव करते हैं। स्वस्थिति को कैसे महसूस किया जाए, तो स्वस्थिति माना ही, स्वस्थिति किसको कहेंगे, स्वस्थिति माना ही आत्म आत्माभिमानी स्थिति। बाबा मुरली के अंदर हमेशा हम बच्चों को ये दो बातें कहते हैं। एक बाबा कई बार कहते हैं देही अभिमानी बनो, और दूसरा बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देही अभिमानी आत्म अभिमानी एक ही है या अलग है? एक ही है, अलग है? एक ही है, अंतर है, दुविधा है अंदर, है ना? स्वस्थिति किसको कहें? तो देही अभिमानी क्या है? स्वस्थिति नहीं है, वो भी स्वस्थिति ही है। भावार्थ ये कि देही अभिमानी और आत्म अभिमानी अगर दो शब्द है तो दो अवस्था है, दोनों ही स्वस्थिति, लेकिन अलग अलग समय पर इसका प्रयोग किया गया है। जब भी बाबा देही अभिमानी कहते हैं तो देही अभिमानी माना कि देह के अभिमान में, यानी देह के भान में हम है, ये कर्मेंद्रिय का प्रयोग करना है। कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते समय हम आत्म अभिमानी अगर बनने जाएंगे तो कर्म में गड़बड़ होने लगेगी, वो कर्म यथार्थ नहीं होगा। इसीलिए बाबा जब भी हमें कर्मेंद्रिय के प्रयोग करते समय आत्म अभिमानी होने की बात कहते हैं, माना देही अभिमानी का प्रयोग होता है। परंतु जब हम सभी कर्म से फ्री हो जाते हैं और जब योग में बैठते हैं, जब अपनी कर्मेंद्रिय को समेट लेते हैं, उस समय ये भान से भी ऊपर हो जाओ कि ये देह में है, उस समय आत्म अभिमानी होकर के बैठ जाओ। लेकिन जब कर्म करना है, मुझे ये हाथों का प्रयोग करना है, तो मालिक बन करके, मैं आत्मा मालिक बन करके ये कर्मेंद्रिय का जब प्रयोग करती हूं, तो कर्म करते समय जब हम ये कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं, उस समय मैं आत्मा मालिक बन करके ये कर्मेंद्रिय का प्रयोग कर रही हूं, तो उस समय देह का कॉन्शियसनेस है। इसीलिए बाबा हमेशा ये कहते हैं देही अभिमानी होकर के कर्म करो। उस समय बाबा कभी भी आत्मा अभिमानी होकर कर्म करो ये नहीं कहते हैं, देही अभिमानी होकर कर्म करो, क्योंकि देह की स्मृति है, क्योंकि देह की कर्मेंद्रिय का प्रयोग मुझे करना है। उस समय भूल नहीं सकते हैं, पैदल चल रहे हैं तो हम पैरों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर उस समय देह के इंद्रियों से ऊपर हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। इसीलिए उस समय कहा देही अभिमानी होकर के कर्म करो। परंतु जब योग में बैठते हैं, उस समय ये कर्मेंद्रिय से भी न्यारे हो जाओ, उससे भी परे हो जाओ और स्वयं को आत्म निश्चय करके बैठो, आत्म समझ करके बैठो। आत्म समझना माना क्या? समझा है ना, आत्मा है, और क्या समझना है? हर बार बाबा कहते आत्म समझ करके बैठो, उसमें भी एक बात हमेशा बाबा की मुरली के अंदर आती है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझो और बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ जोड़ो। और फिर बाबा ये भी कहते हैं, मन मना भव, मन मना भव होकर के बैठो। अब पहले दिन जब हम बाबा के घर में आते हैं और हमें आत्मा का लेसन मिलता है, तो हमें ये बहुत स्पष्ट समझाया जाता है कि आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन और बुद्धि एक है या अलग है? अलग है। अब मन मना भव माना क्या? मन को बाबा में लगाना है। और जब ये कहा देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ जोड़ो, तो मन योग तो नहीं है, बुद्धि योग है। तो पहले बाबा में किसको लगाएंगे? मन मना भव होने से बुद्धि योग लगेगा या बुद्धि योग लगाने से मन मना भव होंगे? सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना। हाँ, कौन किसको फॉलो करता है? मन बुद्धि को फॉलो करता है, बुद्धि मन को फॉलो करती है? मन बुद्धि को फॉलो करते हैं, माना पहले बुद्धि लगेगी, पहले मन लगाना है, तो माना बुद्धि फॉलो करेगी ना मन को। अच्छा, जो कहते हैं पहले बाबा में मन लगेगा, हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो कहते हैं पहले बाबा में बुद्धि लगेगी, और जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो, हाँ, 50-50 भी नहीं हुआ ये तो। देखो, अगर हमारे अंदर ही ये कंफ्यूजन है तो योग क्या लगाएंगे? योग लगेगा नहीं। तो मन क्या करता है, अभी हम अच्छी तरह से इसको समझेंगे। योग में स्वस्थिति की महसूसता में क्या महसूस करना है? तो जब जो लोग कहते हैं मन पहले बाबा में लगेगा, मन को कैसे लगाएंगे? कोई चीज तो नहीं है जो उठा करके यहां से जोड़ दिया। तो मन लगाना मतलब क्या? मन से विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शिव बाबा की संतान हूं, शिव बाबा ज्ञान का सागर, शिव बाबा प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान। लग गया योग। अच्छा, बुद्धि योग कैसे कैसे लगाएंगे? बुद्धि को कैसे लगाएंगे? ऐसा है, बुद्धि क्या काम करती है? निर्णय लेती है। और क्या काम करती है? चित्र बनाती है। बुद्धि जो है ये है आत्मा के चक्षु। इसीलिए बाबा हम बच्चों का आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र जो है ये मन का नहीं है, बुद्धि का है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि के अंदर समाया है। बुद्धि में ज्ञान को समाते हैं, फिर बुद्धि द्वारा ही मन संकल्प क्रिएट करता है। इसीलिए बुद्धि को कहते हैं लगाम, मन है घोड़ा। तो बुद्धि के अंदर जो ज्ञान समाया है, और इस ज्ञान के माध्यम से हम अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। अब तीसरा नेत्र खोलने से क्या होता है कि जो चीजें इन आंखों से दिखाई नहीं देती है वो चीजें हम उस ज्ञान के नेत्र से देखते हैं, क्योंकि बाबा को देखना ये स्थूल आंखों की बात नहीं है, ज्ञान के चक्षु से बाबा को देखना होता है। देखने से क्या होता है, ज्ञान के दिव्य चक्षु से जब बाबा को देखते हैं तो क्या होता है, समझने लगते हैं। जो बातें हम समझ नहीं पाते हैं जब ये तीसरा नेत्र खुलता है तो हर बात स्पष्ट समझ में आने लगती है। जैसे मान लो कि मेरे सामने कोई मशीन है, मुझे मशीन चलाना नहीं आता है, मैं सोचती रहूंगी ऐसा करना होगा, ये करना होगा, ऐसा करना होगा ये, लेकिन अंदर में कंफ्यूजन है, दुविधा है। लेकिन किसी ने आकर मुझे दिखा दिया कि पहले ये बटन चालू करना, फिर ऐसे करना, फिर ये चालू हो जाएगा, उसके बाद ऐसे करना और फिर ऐसे बंद करना, देखने के बाद क्या कहूंगी, अब समझा, अब समझा। जब तक देखा नहीं था तब तक अंदर में कंफ्यूजन था, क्या करना होगा, दुविधा चल रही थी। देखने के बाद कहूंगी अब समझा। ठीक इसी तरह खाली मन का प्रयोग अगर करेंगे, बुद्धि के दिव्य चक्षु के द्वारा देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आता है। और इसलिए जो बाबा कहते हैं आत्मा समझो, रोज रोज मुरली में आता है, अपने को आत्मा समझो। समझ तो लिया है ना, अब क्या करना है, अब देखना है, क्योंकि देखने से उसकी विशेषता, उसकी जो वास्तविकता है उसको महसूस कर सकेंगे। बाबा की एक मुरली याद आती है मुझे, जिसमें बाबा ने कहा था कि जब भी ब्राह्मणों का जन्म होता है, बाबा के घर में आते हैं और ब्राह्मण जन्म हुआ कि जन्मते ही बाबा दो वरदान हर एक को देता है। कौन से दो वरदान हमें मिलते हैं, एक दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु, ये वरदान मिलते हैं। यानी ज्ञान के चक्षु खुलते हैं और दिव्य बुद्धि से, उस चक्षु से जो कुछ भी हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसको देखते हैं, समझ में आने लगता है, बहुत स्पष्ट समझ में आने लगता है। और कोई बात समझ गई, समझ में आ गई, महसूस करना आसान होता है। दुनिया के लोग क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं, क्या कहते हैं, आपकी बातें सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है, सुनने में अच्छी लग रही है समझ में नहीं, क्योंकि वो उस चक्षु का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो भगवान के घर में आने पर ही ये दो वरदान मिला, जो उस वरदान का प्रयोग करने लगते हैं उसको हर बात समझ में आने लगती है। क्योंकि हमारा ज्ञान, बाबा का ये दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान ये आंखों से देखने वाली चीज नहीं है। भौतिक जगत का जो ज्ञान है उसको इन आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये दिव्य ज्ञान है जहां आत्मा से लेकर के सब कुछ, आत्मा क्या, मन बुद्धि संस्कार क्या, परम धाम क्या, सूक्ष्म वतन क्या, परमात्मा क्या, सृष्टि चक्र क्या, झाड़ क्या, सीढ़ी क्या, हर चीज उस दिव्य बुद्धि से समझने की है। इसीलिए आते ही हमें ये दो वरदान मिलते हैं, ताकि हम उसका प्रयोग करके उसको समझें। तो पहले दिन से जो ये प्रयोग करता है दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु का, आत्मा का ज्ञान मिलते ही, जब अंतर चक्षु से, उस ज्ञान के चक्षु से हमने देखा कि हाँ, आत्मा बिंदी स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है, ये जैसे ही देखा समझ में आ गया। जो उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं वो समझ नहीं सकता है। वो कहेंगे, सुनते हैं तो अच्छा लगता है, मन शांत भी होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है, कुछ बातें ऊपर से चली जाती है, क्योंकि जो चीज वो विजुअलाइज कर नहीं सकते हैं वो समझ में नहीं आई। और यहां हर चीज उस बुद्धि से समझने की है, दिव्य चक्षु से देखने की बात है। दादी गुलजार हमेशा जब भी भट्टी कराते थे तो एक बात कहते, मुरली सुनने की विधि क्या है? तो दादी हमेशा कहती कि जो बाबा सुना रहे हैं, अगर उसी समय आप पिक्चर क्रिएट करते जाओ, यानी दिव्य चक्षु से उन चीजों को देखते जाओ, तो आपको सारी मुरली याद रहेगी। लेकिन क्योंकि हम बुद्धि को तकलीफ नहीं देते हैं, इसीलिए खाली मन का प्रयोग कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, अंदर समानी जो चाहिए वो समाती नहीं है। बाद में पूछो आज की मुरली क्या थी, संडे की मुरली होंगी, बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत अच्छी मुरली थी। क्या थी, एक पॉइंट तो सुनाओ। याद नहीं है। याद क्यों नहीं है? क्योंकि उसको हमने देखा ही नहीं, विजुअलाइज नहीं किया, इसीलिए याद नहीं रहती है। बाबा जब स्वर्ग की बातें सुना, स्वर्ग को विजुअलाइज करना शुरू करो। बाबा जब परमधाम की बात करता है तो परमधाम को विजुअलाइज करना शुरू करो। आत्मा की बातें करता है तो आत्मा, तो फिर क्या रहेगा, जब भी कोई पॉइंट पूछेंगे वो चित्र याद आ जाएंगे और उसी के आधार से मुरली की पॉइंट याद आ जाएंगे। और कभी कभी वो चित्र जब क्रिएट कर रहे हैं अंदर में, और वो गुण वो भाव अंदर में भरते हैं, आगे चल करके जैसे जैसे पिक्चर क्रिएट करने का हमें आ गया, और उसके साथ अगर वो भाव बाबा का जो है उसको भरते हैं उसमें, तो अनुभव होता है, महसूसता होती है। अभी हमने जब से वो मुरली पिक्चरों में आने लगी है, चित्रों में आने लगी, अच्छा लगता है, मुरली याद रहती है, वो चित्र याद रह जाते हैं। यहाँ बाबा ने आज झाड़ के बारे में बोला, बाबा ने आज आत्मा के बारे में बोला, बाबा ने आज स्वर्ग की बातों के बारे में बोला, ये याद रह जाता है। लेकिन अभी तक भी जो महसूस करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है? मन और बुद्धि दो चीज है। अब पहले बाबा में कौन लगेगा? तो पहले बुद्धि को चित्र क्रिएट करो, संकल्प अपने आप चलेगा। हम क्या करते हैं, पहले मन को लगाते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शिव बाबा की संतान हूं, शिव बाबा शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, चित्र क्रिएट नहीं किया, यानी बुद्धि को फ्री छोड़ दिया, मन को संकल्प दे रहे हैं। अब बुद्धि फ्री है तो क्या करेगी? तो वो कोई ना कोई चित्र तो देखेगी, फिर
उसके जब स्वभाव चित्र देखना, अब चक्षु खुल गए हैं तो कुछ ना कुछ तो देखेगी। तो क्या देखती है? घर देखती है। घर दिखाई दिया कि तुरंत याद आया, गैस बंद किया कि नहीं, अब गैस दिखाई दिया। तो आत्माओं आत्माओं कर रहे थे और गैस, अरे मैंने गैस बंद किया कि नहीं किया, है ना? तो चला गया मन, बुद्धि ने गैस देखते ही, घर देखते ही मन चला गया। फिर सोचते हैं छोड़ो गैस को, जो होना होगा कोई ना कोई देखेगा, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, है ना? चालू कर देते हैं। फिर याद आता है, बुद्धि फ्री हो गई तो बुद्धि घर को देखेगी, फिर याद आएगा कबाट बंद किया कि नहीं किया, है ना? अरे कबाट अगर खुला रह गया तो वो चीज वहीं पड़ी है, किसी के हाथ लग गई तो मुश्किल हो जाएगा, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, है ना? मन चला गया, कहाँ गया? हाँ, उसके बाद छोड़ो, जो होना होगा होगा, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। फिर शुरू करते हैं, फिर कोई व्यक्ति का चेहरा याद, अरे उसको ये मैसेज देना ही भूल गए, अब उसको ये बहाना देना पड़ेगा, ऐसा कहना पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, ऐसा मन चला गया। और इतने में सफेद लाइट हो जाती है, कहते मेरा योग लगता ही नहीं है, योगी नहीं लगता है, है ना? कहां जाता है? अरे फालतू बातों में ही चला जाता है, क्या करे? जैसे घर में दो बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। अब मान लो कि बड़े बच्चे को आप फ्री छोड़ दो, छोटे बच्चे को कहो आप पढ़ाई करो, चलो बैठो, होमवर्क करो तुम, स्कूल का होमवर्क। अब बड़ा फ्री है, किसके साथ खेलेगा? तो वो क्या करता है, दरवाजे के पीछे खड़े रह करके ये छोटे को बॉल बैट दिखाता है। अब ये छोटे का पढ़ने में मन लगेगा? हाँ? अब आपके ये डर के कारण वो बैठा तो है, लेकिन जैसे ही फोन आया, आप किसी से बात करने लगे, भाग गया वो तुरंत ही, है ना? फिर आपने देखा, अरे कहाँ गया ये, बुलाओ इसको, बैठाओ, बैठो यहाँ, होमवर्क करो, कहाँ भाग गया था तुम, है ना? अब बिठाया उसको, अब आप उसको कहो कि भाई जैसे ही आप कुछ काम करने लगे, सब्जी काटने में लगे, कि वो मौका देखते फिर भाग जाता है। बड़ा उसको कोई ना कोई खिलौना दिखाता रहता है, वो भाग जाता है। या तो आप छोटे को कहो कि भाई देख, मेरे को तेरे से बहुत प्यार है, तुम यहीं बैठो, वो भले खेलने जाए, तुम यहीं बैठो, बैठेगा? भाई आपको बहुत प्यार है छोटे से, लेकिन उसको खेलने के लिए नहीं जाने देना, मेरे पास में बैठा रहे बस। क्या होगा? चिड़चिड़ा होगा आपको देख करके, मेरे को खेलने नहीं जाने दे। हम भी मन को क्या, लग बाबा में तो लग बाबा में, हम मन मना भव होना लग बाबा में, और बुद्धि को फ्री छोड़ दिया। अब बुद्धि क्या करती है, मन को कोई ना कोई खिलौना दिखाती रहती है, और जैसे खिलौना दिखाए भागे मन उधर से। फिर कहते हैं कहां चला गया ये मन, फिर बुला करके ले आते हैं, लग बाबा में तू लग बाबा में। अब उसी में जब भट्टी में बैठे हैं, बार बार ऐसा होता रहा होता रहा, थक गया मन और बुद्धि, थक गए तो क्या करेंगे बच्चे, सो जाएंगे, इसलिए नींद आती है। फिर योग में नींद आ गई, थक गए, जब इधर उधर इधर उधर 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 करते रहे हम उनको, थक गए, सो गया। कहते हैं अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। इसलिए जैसे घर में अगर छोटे को पढ़ाना है तो बड़े को भी बिठाना पड़ता है, इतना तो स्वाभाविक हम समझते हैं। लेकिन यहां क्यों नहीं समझ पाते हैं कि अगर मन को लगाना है तो बुद्धि को भी बिठानी पड़ती है। जब तक बुद्धि और मन ये दोनों नहीं बैठते हैं, तब तक बाबा में लगने वाला नहीं है। इसीलिए वाक्य पूरा समझो, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझो, यानी आत्मा देखो। समझेंगे तब जब देखेंगे। अपने को आत्मा समझो और बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ जोड़ो। ये पूरा वाक्य है। फिर मन मना भव, जब बुद्धि का योग लगेगा तो मन मना भव होंगे। आत्म समझना माना क्या? जैसे मान लो एक व्यक्ति है, डॉक्टर है। अब घर में अपने आप को थोड़ी डॉक्टर समझेगा, घर में तो घर का सदस्य समझेगा। तो घर का सदस्य समझने के कारण घर के कारोबार में हाथ बटाएगा, है ना? बगीचा होगा, बगीचे में पानी भी डालेगा, बच्चों के साथ खेलेगा भी या बैठेगा, बातें करेगा, क्योंकि डॉक्टर थोड़ी समझा है घर में। लेकिन जैसे ही सोमवार होता है उसको हॉस्पिटल जाना है, उसको रटना नहीं पड़ता है, मैं डॉक्टर हूं, तभी डॉक्टर समझेगा नहीं। जैसे ही तैयार होने लगता है, माना डॉक्टर समझा, स्मृति में वो बात आ गई, मैं डॉक्टर हूं, रटना नहीं पड़ता है, याद दिलाना नहीं पड़ता है। लेकिन तैयार होते होते उस स्मृति में जैसे ही मन और बुद्धि स्थित हो गए, मैं डॉक्टर हूं कि कौन याद आता है उसको? पेशेंट याद आएंगे, हॉस्पिटल याद आएगा, दवाइयां याद आएंगी, ऑपरेशन याद आएगा, ट्रीटमेंट याद आएगा। आज इसको डिस्चार्ज देना, आज इसको ये ट्रीटमेंट देना है, आज इसको भर्ती करना है, इतने बजे ऑपरेशन, सारा प्लानिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर समझा। उस समय उसको घर के सदस्य याद नहीं आएंगे। तो डॉक्टर समझना माना क्या? उसने अपने आप को डॉक्टर समझा, डॉक्टर समझना माना क्या? उस भाव में अपने आप को स्थित कर दिया, रटता नहीं है। अच्छा, जैसे ही वहां से निकला, घर से हॉस्पिटल जाने के लिए ये सारा प्लानिंग अंदर चल रहा है, और उसकी मां ने कहा कि बेटा शाम को जब तुम घर लौटो तो ये चीज रास्ते में से लानी है। हां किया। जब शाम को आता है, मां पूछती है ले आया? क्या कहेगा? भूल गया। मां कहेगी भूलने की बीमारी तो मुझे है, तुझे कहां से लग गई? भूलने की बीमारी नहीं है। भूलने की बीमारी अगर है तो ऑपरेशन भूल जाना चाहिए, दवाइयां भूल जानी चाहिए, ट्रीटमेंट भूल जाना चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं भूला। ये चीज लाना क्यों भूल गया? क्योंकि वो उस समय कहा गया था जब उसने बेटा नहीं समझा था, डॉक्टर समझा था, इसीलिए भूल गया। वो दोनों बातें कनेक्ट नहीं हुई अंदर में, स्मृति के अंदर। डॉक्टर समझा है तो फालतू बातों की जो चीजें हैं वो अंदर में जाएगी नहीं। कान से खाली सुना उसने, ठीक है कहा, लेकिन अंदर में वो बात रजिस्टर नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर समझ लिया था, इसलिए गई नहीं, है ना? जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी चाल कैसी होगी? ऑफिशियल। कोई गुड मॉर्निंग करता है, गुड मॉर्निंग करके आगे बढ़ता है, खड़ा नहीं हो जाता है फालतू बातें करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर समझा है, उसको टाइम की वैल्यू है। अपने आप डॉक्टर समझने से टाइम की वैल्यू आ जाती है। जब पेशेंट को राउंड पर देखने जाते हैं ऑपरेशन किया होता है, पेशेंट कंप्लेन, डॉक्टर साहब सारी रात नींद नहीं आई, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये सारी कंप्लेन शुरू कर देते। डॉक्टर जानता है ये सब कुछ हुआ है, फिर कहेंगे अच्छा हमने ये दवाई लिया था रात को। हाँ डॉक्टर साहब लिया तो भी नींद नहीं आई, ठीक है आज बदली कर देते हैं, रखेंगे वही, कह दिया ना बदली कर देंगे, दूसरे दिन आकर पूछेंगे हाँ डॉक्टर साहब आज बड़ी अच्छी नींद आई, है ना, वो भी अंदर में मुस्कुराता क्योंकि उसने वही दवाई रखी थी, चेंज किया ही नहीं था। डॉक्टर समझा है तो उसको पता है पेशेंट को कैसे हैंडल, कि दूसरे दिन वो दर्द अपने आप आधा कम हो जाना है, पहले दिन है तो जरूर है ज्यादा रहना ही है। डॉक्टर समझा है तो उसको मालूम है पेशेंट को क्या क्या होना है, कैसे होना है और उसको हैंडल। उस समय गुस्सा नहीं करता या हाँ ऐसा भी हुआ होगा, ये भी हुआ होगा, ऐसा भी हुआ होगा, फिर तो पेशेंट की हालत ही क्या हो जाए, है ना। डॉक्टर जानता है कि भाई ऑपरेशन किया है, उसको 15 दिन क्या महीना क्या चलने में धीरे धीरे शुरू होगा, ऑपरेशन हुआ है, फिर भी क्या कहता, अरे देखना तुम 2 दिन के अंदर तो ऐसा दौड़ने लगेगा कुछ नहीं होगा, कहता है ना। डॉक्टर समझा है इसीलिए उसको पता है कि पेशेंट को कैसे मुझे समझाना है। अच्छा ओपीडी में बैठा है, वहां कोई रिश्तेदार आ गया, रिश्तेदार जैसे आया, डॉक्टर साहब कैसे हो, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ आपसे, घर में सब ठीक है, माताजी ठीक है, पिताजी ठीक है, डॉक्टर साहब क्या सब ठीक है, बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर समझा है, उस समय रिश्तेदार थोड़ी समझ रहा है, वो फालतू बातें करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। बाबा भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, टाइम की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अभी हम अपने आप को देहधारी समझ रहे हैं, फलाना फलाना समझ रहे हैं, आत्मा समझा ही नहीं है तो क्या होगा। जैसे डॉक्टर को रटना नहीं पड़ता, सारा दिन उस स्मृति में उस भाव में रहता है, और इसीलिए हर जगह पेशेंट के साथ कैसे हैंडल करना है, रिश्तेदारों को कैसे हैंडल करना है, स्टाफ को कैसे हैंडल करना है, डॉक्टर समझा है तो उसको आ जाता है और उसी अनुसार चलता है। ठीक इसी तरह जब एक व्यक्ति टीचर है, जब अपने आप को टीचर समझता है तो कौन याद आता है, स्टूडेंट याद आते हैं, क्लास याद आता है, आज ये क्लास को ये पढ़ाना, ये क्लास का होमवर्क चेक करना, ये क्लास को एग्जाम लेना, यूनिट टेस्ट, यही सब बातें। उस समय उसको अपने बच्चे याद नहीं आएंगे क्योंकि टीचर समझा है। ऐसे ही जब एक व्यक्ति अपने आप को पति समझता है तो कौन याद आएगा, पत्नी की याद आएंगी। जब खुद को पिता समझेगा तो कौन याद आएगा, बच्चों की याद आएंगी। जब खुद को बच्चा समझेंगे तो कौन याद आएंगे, माता पिता की याद आएंगी। जब खुद को भाई समझता है तो कौन याद आता है, भाई बहन की याद आएंगी। तो खुद को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। आत्मा समझो, उस भाव में अपने आप को ले आओ, और जब कर्म करते उस भाव में आ गए उसी को कहा देही अभिमानी। और जब योग में बैठे तो उसी को कहा आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी का मतलब ये नहीं कि मैं रटती रहूं, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, ये रटना नहीं है, उसको योग नहीं कहते हैं। योग का मतलब है उस भाव में अपने आप को स्थित कर देना, आत्मभाव में स्थित करना। आत्मभाव माना क्या, आत्मभाव में स्थित करना माना क्या, कि आत्मा के जो 7 गुण है वो 7ों गुणों के भाव में अपने आप को ले चलना। जब हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूं तो शांति के भाव में अपने आप को स्थित करना। ये नहीं मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, अनुभव कुछ भी नहीं हुआ, महसूस तक कुछ भी नहीं हुई, ये तो रटना हो गया। ये रटना नहीं है, लेकिन जब मैं कहती हूं मैं शांत स्वरूप हूं, स्थित हो जाऊं शांति में, उस शांति की तरंग को महसूस करो, उस शांति का स्वरूप बन जाओ, शांति का मन और बुद्धि एकदम शांत हो जाए, चारों ओर वो शांति के प्रकंपन महसूस करो, इसको कहते हैं आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्वस्थिति की महसूसता। जब कहते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूं, तो पवित्रता को कैसे देखेंगे? पवित्रता को देखेंगे लाइट से, क्योंकि पवित्रता माना ही लाइट। तो मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं और चारों ओर जैसे लाइट का ओरा, लाइट का एक प्रभा मंडल, एक आभा मंडल फैला हुआ है, और उस आभा मंडल में अपने आप को देखो और उस पवित्र भावनाओं को महसूस करो। उस पवित्र भाव में उस समय कोई व्यर्थ भाव, कोई नेगेटिव भाव इमर्ज न हो, शुद्ध स्वरूप को महसूस करो, जैसे एकदम लाइट स्वरूप हो जाओ, उसको महसूस करो। इसी तरह जब मैं कहती हूं कि मैं प्रेम स्वरूप हूं, तो बाबा से वो प्रेम की तरंग को महसूस करो, जैसे मुझ में समाती जा रही है। शक्ति स्वरूप हूं, सकाश ले रही हूं, तो बाबा से उस लाइट की तरंगे जैसे मेरे ऊपर आ रही है और उसको महसूस करते हैं। जब ये महसूसता होती है और जैसे आत्मा को ये सातों गुणों से हमने चार्ज कर लिया, बाबा की उस सकाश से चार्ज कर लिया, तब फिर जब कर्म में आते हैं तो कर्म में कर्मेंद्रिय से वही ऊर्जा उस कर्म में भी प्रवाहित हो रही है। खाना बना रहे हैं, योग में से उठ करके आए हैं, खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं, तो वही शांत स्वरूप में जैसे मैं भोजन स्वीकार कर रही हूं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, उस भोजन को जैसे सकाश दे रही हूं, उसमें भी वो लाइट की तरंगे भर रही हूं, तो उसमें जो भी अशुद्धि के कीटाणु हैं वो सारे जल करके भस्म हो रहे हैं। बाबा को उस भोजन को प्रेम से स्वीकार करा रही हूं और फिर जैसे मैं उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर। तो जब देही अभिमानी है, माना कर्म करते हुए हमारी कर्मेंद्रिय से वो तरंग उस कर्म में भी जा रहे हैं, तब कर्म कुशल होने लगेगा और वो कर्म आपको खुशी प्रदान करेगा, आनंद का अनुभव कराएगा, शांति का अनुभव कराएगा। घर के वायुमंडल के अंदर वो तरंग को फैला रहे हैं, तो घर में भी जब कोई आते हैं वो भी महसूस करेंगे आपके घर में बड़ी शांति है, महसूस करेंगे, क्योंकि वो तरंग हम फैला रहे हैं। आप घर में जब चल रहे हैं, बैठे हैं, तो आप खाली बैठे नहीं हैं। जब योग में आप आत्म अभिमानी होकर के वो सातों गुणों से अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे थे, माना वो तरंग आप फैला रहे थे, प्रकंपन सारे घर के वायुमंडल के अंदर भी फैल जाते हैं। और ये बाबा चाहता है हमसे कि घर के वायुमंडल के अंदर भी ये आत्म भाव के प्रकंपन ऐसे फैले हुए हो, कर्मेंद्रिय से हर कर्म करते हुए हर चीज में उस तरंग को, हम कोई भी चीज उठाते हैं माना हम उसमें वो तरंग भर रहे हैं,
हाथों से वो तरंग निकल करके उसमें जा रही है, दृष्टि से वो तरंग निकल करके जा रही है। खाना बना रहे हैं, वो प्रसाद कब बनेगा? कि जब हम जब देखते हैं तो जैसे उसमें से वो तरंग उसमें भर रहे हैं, हाथों से बनाते समय हाथों से वो तरंग उसमें भर रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा समझा ही नहीं है, योग में आत्मा अभिमानी होकर बैठे ही नहीं है, आत्मा में वो शक्ति भरी नहीं है, तो पुराने संस्कार इमर्ज होना बहुत स्वाभाविक है कि खाना बनाते समय भी व्यर्थ सोचना चालू हो जाएगा। वो व्यर्थ की तरंग उसमें जाएंगी, नेगेटिव की तरंग उसमें जाएगी, वो प्रसाद नहीं है, फिर वो प्रसाद नहीं बनता है। इसीलिए आत्म अनुभूति करना, अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है, अनुभव बहुत सहज होता है। आप सोचेंगे हमको तो अनुभव होता ही नहीं है। अनुभव तब होगा जब मन और बुद्धि दोनों एक हो जाएंगे, वो है एकाग्रता। और जहां ये एकाग्रता आई वहां अनुभूति सहज है। जैसे मान लो आप यहां आए हैं, अभी तो फिर भी बहुत अच्छे दिन है, लेकिन मान लो कि आप दिसंबर जनवरी में आओ, जब बहुत ठंडी होती है, माइनस कभी कभी चला जाता, उन दिनों में आप आओ और सुबह उठो, बाथरूम में जाओ नहाने के लिए और गर्म पानी नहीं आ रहा है और ठंडे पानी की बाल्टी रखी है रात से, क्या होगा? कुछ अनुभव होगा? क्या होगा? क्या होगा? पानी को हाथ तो लगाया नहीं, हाथ तो लगाया नहीं। एक सिहरन दौड़ जाती है, करंट दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? कैसे दौड़ी करंट? रोंगटे खड़े हो गए, वापस बाहर आ गए, कमरे में दूसरे जो थे क्या हुआ? नहाया नहीं, अरे गर्म पानी नहीं है। तो पानी की बाल्टी तो पड़ी है ना, नहा लो, दो लोटा डाल दो, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, अरे भाई आपने हाथ तो लगाया नहीं, तो क्या कहते हैं? हाथ लगाने की जरूरत है क्या? उसको समझ नहीं सकते कि रात भर का पानी है कितना ठंडा हो? कॉमन सेंस है ये तो, है ना? इतना समझ सकते हैं, कैसे समझा? पानी ठंडा है कैसे समझा? बुद्धि ने समझा। और रोंगटे खड़े हो गए, कैसे खड़े हो गए रोंगटे? हाँ, जैसे ही बुद्धि ने देखा पानी रात भर का रखा हुआ है कितना ठंडा होगा, अंदाजा एक बुद्धि ने अनुमान लगा लिया कितना ठंडा होगा, मन ने संकल्प दे दिया अगर दो लोटा भी इसमें से डाले ना तो ऐसी ठंडी चढ़ जानी है, और ये सोचते ही आपके रोंगटे खड़े हो गए, सोचते ही। तो मन और बुद्धि जब एक हो गए, जो बुद्धि ने देखा वही मन ने सोचा, कंफर्म किया कि आपको अनुभव हुआ। अगर ठंडी का अनुभव कर सकते हैं तो शांति का अनुभव नहीं हो सकता, परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं हो सकता है, आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। इतना सहज है, मुश्किल क्या है? योग मुश्किल कब लगता है? विधि से नहीं किया है, या तो बुद्धि को फ्री छोड़ दिया, या तो चित्र देखते रहते मन को फ्री छोड़ देते हैं। दोनों साथ में चलना चाहिए, दोनों, जब दोनों एक साथ में एकता में आ जाते हैं, वो है भाव, वो आपको अनुभव कराता है। जैसे एक उदाहरण और देती हूं अंत में, कि मान लो कि आप किसी के घर में गए रात में और भोजन करने के लिए बुलाया था, क्योंकि आप घर में अकेले थे और कोई था नहीं, वो भी अकेले थे, तो कहा आप यहीं आ जाना, दोनों मिलके खा लेंगे। खा लिया, रात में बातें करने लग गए, बातें करते करते 12-1 बज गया, पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। 1 बजे आपको ख्याल, अरे इतना टाइम हो गया, हाँ चलो चले जाते हैं, निकल जाते हैं, पहुंच जाएंगे, 15 मिनट का ही तो रास्ता है। भई आपके वो मित्र ने कहा भी, अरे यहीं सो जाओ,
घर में कोई है तो नहीं, यहां भी कोई नहीं है, यहीं सो जाओ, सुबह में चले जाना। अरे 15 मिनट का रास्ता है, चले जाते हैं, कपड़े बपड़े कुछ लाए नहीं, वहीं चले जाते हैं। अरे भाई क्यों जाना चाहिए, एक तो इतनी रात हो गई है, रास्ता सुनसान हो गया होगा, यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। नहीं नहीं मैं चले जाते हैं, 15 मिनट का रास्ता है, फटाफट, रोज का ही तो रास्ता है हमारा। निकले निकले और जैसे ही उस एकांत के रास्ते पर आए कि कुछ आवाज सुनाई दिया, है ना, तो क्या सोचते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली होगा, कुत्ता बिल्ली होगा, है ना। फिर बाबा 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 मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, है ना, चालू हो जाता है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा लगता है ये कुत्ता बिल्ली का आवाज तो नहीं है, लगता है कोई चलने की आहट आ रही है, कहीं कोई व्यक्ति मेरे पीछे तो नहीं चल रहा है, और वो व्यक्ति अगर चाकू लेके चल रहा है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं चतुर्भुज आत्मा हूँ, बाबा मेरा साथी है, है ना, और कोई व्यक्ति चल रहा है, ये भी आवाज आ रही है, चल रहा है, कहीं कोई व्यक्ति चाकू लेके तो नहीं, अगर कहेगा तो मैं, मेरे पास क्या है, हाँ भाई बैज है, ये अंगूठी है, ये घड़ी है, ये निकाल करके दे दूंगा, ये भी सोच रहे हैं, और तेज कदम बढ़ाए, बाबा मेरे साथ है, बाबा साथी है करके, है ना। लेकिन एक क्षण ऐसी आई जो ऐसी लगा कि जैसे कोई हवा पास हो गई, अब डर लगा, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं सामने पकड़ेगा, दबोचेगा मुझे, मुड़े ऐसा दौड़ते हुए उस मित्र के घर में आ गए। ठंडी के दिन है, पूरा पसीना पसीने में, देख करके क्या हुआ उसने पूछा, अरे आज जो मैंने डर का अनुभव किया, कभी नहीं हुआ ऐसा अनुभव। तो उसने कहा क्यों बाबा को याद नहीं किया, अरे बाबा को तो बहुत याद कर रहे थे ना, हम याद कर रहे थे बाबा को, याद कर रहे थे बाबा को, एक सेकंड भी बाबा को याद नहीं किया, खाली मुख बोल रहा था, अंदर क्या चल रहा था, पहले कुत्ता बिल्ली देखा, फिर कोई आदमी देखा, फिर भूत प्रेत देखा, तो अंदर बाबा की याद कहाँ थी, खाली मुख बाबा 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 बाबा, जैसे वो जाप करते हैं ऐसे जाप कर रहा था, लेकिन बाबा की याद नहीं थी। फिर कहते पता नहीं बाबा ने मदद ही नहीं किया, बाबा को याद किया हो तब तो बाबा मदद करें, बाबा को याद कहाँ कर रहे थे, मुख से बोल रहे थे खाली, वो तो आदत पड़ी है इसीलिए बोल रहे थे, है ना। डर का अनुभव कैसे किया, डर को कैसे महसूस किया, कैसे महसूस किया, मन और बुद्धि एक हो गए, जो बुद्धि ने चित्र देखा मन ने वही संकल्प दिए, कन्फर्म कर दिया, कन्फर्म करके एक हो गए तो अनुभव हो गया, डर का अनुभव हुआ। अगर डर का अनुभव कर सकते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो सकता है, परम आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है। ये है महसूस करना, इसको कहते हैं महसूस करना। तो भी बट्टी में आए हैं तो इस तरह की बट्टी करना, दोनों को, दोनों बच्चों को, हमारे दो बच्चे हैं ये मन और बुद्धि, दोनों को लेकर के बैठना यहाँ पर, एक को फ्री नहीं छोड़ देना, नहीं तो कहाँ कहाँ चक्कर मारते हुए आपको भट्टी में जो अनुभव करना है, जो महसूस करना है, करने नहीं देगा। और जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, जमा का खाता जो होना चाहिए महसूस करते हुए, वो जमा के खाते का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ? अच्छा, ओम शांति।
सबकी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स, बड़े सरल तरीके से और बड़े सहज रीति से महसूसता क्या होती है और गहराई की अनुभूति जो बाबा अभी करना चाह खुद करें और औरों को कराएं, ये जो बाबा हम सबसे चाहते हैं वो कितना सहजता से हम कर करा सकते हैं, इस बात को आदरणीय उषा बहन ने स्पष्ट किया है। एक बार फिर सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जगमग ज्योती हूँ मैं, दीप नहीं हूँ मोती हूँ, मैं दीप नहीं हूँ मोती हूँ, कोई की जगमग ज्योती हूँ, सजीव तन को जब मैं भूलूं परम धाम में होती हूँ, सजीव तन को जब मैं भूलूं परम धाम में होती हूँ, मैं सोई जगमग ज्योती हूँ, मैं तो एक जगमग ज्योति हूँ।